एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने दुनिया भर में काफी काफी बहस छेड़ी थी।
हाँ, खासकर 90 के दशक में, है ना, जब दुनिया बिल्कुल बदल रही थी।
बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं फ्रांसिस फुकुयामा की किताब इतिहास का अंत और आखिरी आदमी, The End of History and the Last Man।
और ये किताब ना आज भी उतनी ही रेलेवेंट लगती है। मतलब जब हम दुनिया किधर जा रही है, लोकतंत्र का क्या होगा, ये पहचान की राजनीति, इन सब पर सोचते हैं।
सही कहा।
ये एक बड़ा अजीब सा चौंकाने वाला सवाल उठाती है, क्या हम इंसान, क्या हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं? विचारों की लड़ाई क्या वाकई खत्म हो गई है? और इसी बड़े सवाल से जूझते हैं फ्रांसिस फुकुयामा। वो एक जाने माने अमेरिकी राजनीतिक विचारक हैं, अर्थशास्त्री भी हैं और लेखक तो हैं ही।
हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ अकादमिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हार्वर्ड से पीएचडी की सैमुअल हंटिंगटन जैसे बड़े नामों के छात्र रहे, लेकिन साथ ही उन्होंने अमेरिकी सरकार के विदेश विभाग में पॉलिसी लेवल पर काम किया है। रैंड कॉरपोरेशन से भी जुड़े रहे।
अच्छा,
तो मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का अनुभव।
जी हाँ, और शायद इसीलिए उनका नजरिया थोड़ा अलग है।
कैसे?
वो मानते हैं कि इतिहास को समझने के लिए सिर्फ अर्थव्यवस्था या मिलिट्री ताकत देखना वो काफी नहीं है।
तो फिर क्या जरूरी है?
असली खेल तो उनके हिसाब से विचारों का है, और उससे भी ज्यादा इंसान की वो गहरी इच्छा, अपनी पहचान, अपनी इज्जत, अपनी मान्यता, यानी रिकग्निशन पाने की।
मान्यता, रिकग्निशन।
हाँ, और इस सोच पर जर्मन दार्शनिक हेगेल और उनके इंटरप्रेटर अलेक्जेंडर कोजेव का काफी असर दिखता है।
अच्छा, और ये किताब, ये तो उनके एक पुराने लेख का विस्तार है ना?
बिल्कुल। 1989 में उनका एक लेख आया था, इतिहास का अंत, बहुत मशहूर हुआ था बर्लिन की दीवार गिरने के ठीक आसपास।
हाँ, वो दौर ही अलग था। बिल्कुल, दुनिया में एक उम्मीद सी थी और उसी माहौल में फुकुयामा ने बड़ा आइडिया पेश किया।
तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये किताब आखिर कहना क्या चाहती है? इसका जो मूल तर्क है वो क्या है?
देखिए, ये कोई आसान किताब नहीं है। राजनीतिक दर्शन का एक बहुत महत्वाकांक्षी काम है। ये दावा करती है कि भाई, मानव समाज का जो विकास है ना, वो ऐसे ही रैंडम नहीं हो रहा, उसकी एक दिशा है, एक डायरेक्शन।
अच्छा।
हाँ, फुकुयामा इसी सार्वभौमिक इतिहास या यूनिवर्सल हिस्ट्री के विचार को वापस लाते हैं कि एक कहानी है जो पूरी इंसानियत पर लागू होती है, और वो कहानी कहीं जाके खत्म होती है।
खत्म होती है मतलब कैसे? और ये इतिहास का अंत, इसका मतलब क्या है? क्या दुनिया में चीजें होनी बंद हो जाएंगी, लड़ाई, चुनाव, ये सब?
नहीं नहीं वो नहीं, घटनाएं तो चलती रहेंगी, जाहिर है।
हाँ,
फुकुयामा का इतिहास का अंत से मतलब है वैचारिक विकास का अंत, आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन।
अच्छा,
मतलब इस सवाल पर बहस खत्म हो गई है कि इंसानों के लिए सरकार चलाने का, समाज चलाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है।
और उनके मुताबिक वो तरीका कौन सा है?
वो है पश्चिमी उदार लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी, और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी।
अरे,
उनका तर्क है कि अब इसके सामने कोई सीरियस वैचारिक चुनौती बची ही नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है जो टिक सके।
ये तो बहुत बहुत बड़ा दावा है। ऐसा क्यों मानते हैं वो? कौन सी ताकतें हैं जो हमें इस मंजिल तक ले जा रही हैं?
वो दो मुख्य इंजन बताते हैं, दो ड्राइवर्स। पहला है आधुनिक विज्ञान और तकनीक का तर्क, लॉजिक ऑफ मॉडर्न साइंस।
ओके।
देखिए, वैज्ञानिक खोजें लगातार होती हैं, वो जमा होती जाती हैं, आप उन्हें भुला नहीं सकते।
सही बात है।
और ये खोजें मिलिट्री ताकत के लिए, आर्थिक विकास के लिए जरूरी हैं, तो देशों को आधुनिक बनना ही पड़ता है। और फुकुयामा मानते हैं कि बाजार आधारित पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म ही वो सिस्टम है जो इस तकनीकी तरक्की को सबसे अच्छे से क्या कहते हैं, संभाल सकता है, उसे बढ़ावा दे सकता है।
सोवियत संघ का उदाहरण शायद इसीलिए देते हैं।
बिल्कुल, कि वो इस रेस में टिक नहीं पाया। तो ये पहला इंजन हुआ विज्ञान और अर्थव्यवस्था, जो समाजों को एक जैसे रास्ते पर धकेल रहा है।
ठीक है, ये तो हुआ एक इंजन, लेकिन आपने कहा था दो है, और दूसरा वाला शायद ज्यादा जरूरी है उनके हिसाब से।
हाँ बिल्कुल, और यहीं ये किताब और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है।
बताइए।
दूसरा और फुकुयामा के अनुसार ज्यादा बुनियादी, ज्यादा फंडामेंटल इंजन है मान्यता के लिए इंसान का संघर्ष, स्ट्रगल फॉर रिकग्निशन।
मान्यता यानी पहचान, इज्जत।
हाँ, ये सिर्फ पेट भरने की जरूरत नहीं है, ये अपनी अहमियत समझे जाने की जरूरत है, अपनी कीमत का एहसास, जिसे वो हेगल के हवाले से थाइमोस कहते हैं।
थाइमोस।
हाँ, हमारी आत्मा का वो हिस्सा जो चाहता है कि उसकी वैल्यू हो, उसे पहचाना जाए। फुकुयामा कहते हैं कि उदार लोकतंत्र ही वो व्यवस्था है जो इस गहरी मानवीय जरूरत को, सबसे बेहतर तरीके से और सबसे बड़ी बात सबके लिए पूरा करती है.
सबके लिए
जी,
यूनिवर्सल
जी.
लेकिन क्या ये किताब बस यहीं रुक जाती है कि लोकतंत्र जीत गया सब ठीक है, या इसमें कोई चेतावनी कोई वार्निंग भी है?
हाँ, यही पर फुकुयामा एक बहुत सोचने वाला मोड़ लेते हैं. वो नीचे के आखिरी आदमी द लास्ट मैन का जिक्र करते हैं.
आखिरी आदमी?
हाँ, वो चिंता जताते हैं कि क्या सब कुछ पा लेने के बाद जब संघर्ष नहीं रहेगा, पूरी सुरक्षा होगी, आराम होगा, तो इंसान कहीं अंदर से खोखला तो नहीं हो जाएगा?
मतलब
क्या वो आखिरी आदमी बन जाएगा, संतुष्ट सुरक्षित, पर बिना किसी जुनून के, बिना किसी बड़े सपने के, बिना जोखिम उठाने की हिम्मत के?
बाप रे,
ये इतिहास के अंत की एक संभावित अंधेरी तस्वीर है, एक कीमत जो चुकानी पड़ सकती है.
जी, ये तो बिल्कुल अलग ही एंगल है कि आराम और शांति भी प्रॉब्लम बन सकती है. चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं किताब के. आपने कहा 5 भाग हैं. पहला भाग तो सार्वभौमिक इतिहास के आइडिया पर है.
जी, पहले भाग में फुकुयामा यही बेस बनाते हैं कि 20वीं सदी में इतनी लड़ाइयां, इतनी त्रासदियां हुई कि लोग मानने लगे थे कि इतिहास का कोई मतलब नहीं, कोई दिशा नहीं, सब बेकार है.
हाँ, वो निराशावाद.
बिल्कुल. लेकिन फिर जब साम्यवाद गिरा तो फुकुयामा कहते हैं कि हमें फिर से सोचना पड़ा, शायद हम गलत थे, शायद इतिहास में वाकई कोई पैटर्न है, कोई लॉजिक है. और यहीं वो हेगल के फ्रेमवर्क को अपनाते हैं.
समझ गई. और फिर दूसरा भाग, वो विज्ञान और तकनीक वाला इंजन.
हाँ, दूसरे भाग में वो इसी भौतिकवादी मैकेनिज्म को दिखाते हैं कि कैसे विज्ञान की तरक्की रुकती नहीं, वो आगे ही बढ़ती है. ये देशों पर दबाव डालती है कि आधुनिक बनो वरना पीछे रह जाओगे,
मिलिट्री और इकोनॉमी के लिए.
बिल्कुल. और ये तरक्की जो है, ये बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को फेवर करती है, क्योंकि वही सिस्टम नए आइडियाज, इनोवेशन और कॉम्प्लेक्सिटी को सबसे अच्छे से हैंडल कर पाता है. सोवियत सिस्टम क्यों फेल हुआ? क्योंकि वो इस मामले में पिछड़ गया. तो ये लॉजिक सभी समाजों को एक कॉमन इकोनॉमिक मॉडल की तरफ धकेल रहा है.
ठीक है, ये हुआ बाहरी ढांचा, लेकिन आपने कहा था असली कहानी अंदर की है, वो पहचान वाली, थाइमोस वाली. ये तीसरे भाग में आता है, मान्यता के लिए संघर्ष. ये थाइमोस है क्या आखिर? जरा और आसान शब्दों में समझाएंगे.
जरूर. आप सोचिए, जब कोई आपकी इज्जत करता है, आपकी बात को वजन देता है, तो आपको कैसा महसूस होता है?
अच्छा लगता है, वैल्यूड महसूस होता है.
बिल्कुल. और जब कोई बेइज्जती करता है, आपको नजरअंदाज करता है,
तो गुस्सा आता है, बुरा लगता है.
बस ये जो अपनी कीमत, अपनी गरिमा, अपनी वर्थ का एहसास है, इसी को हेगल ने थाइमोस कहा था. फुकुयामा कहते हैं कि ये सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की जरूरत नहीं है, ये उससे कई ज्यादा गहरी, कई ज्यादा मानवीय इच्छा है. और पूरा का पूरा इतिहास गवाह है कि इंसान अपनी इसी पहचान, इसी सम्मान के लिए लड़ा है, मर मिटा है.
और इसी को समझाने के लिए वो हेगल के मालिक गुलाम वाले उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं ना.
हाँ, बिल्कुल.
हेगल का वो क्लासिक डायलेक्टिक कि मालिक गुलाम से पहचान चाहता है, लेकिन वो पहचान उसे संतुष्ट नहीं करती, क्योंकि वो गुलाम को अपने बराबर नहीं समझता.
हाँ, वो तो इन्फीरियर है उसकी नजर में.
बिल्कुल. और गुलाम को तो पहचान मिलती ही नहीं, उसकी गरिमा तो कुचली जाती है. फुकुयामा कहते हैं कि इतिहास में जितनी भी व्यवस्थाएं आईं, राजशाही, एरिस्टोक्रेसी, फासीवाद, साम्यवाद, वो सब इसी पहचान की समस्या को ठीक से हल नहीं कर पाई.
कैसे? किसी में सिर्फ कुछ खास लोगों को ही सम्मान मिलता था, बाकियों को नहीं. किसी में व्यक्ति की पहचान को ही दबा दिया जाता था, कहा जाता था कि समूह या राष्ट्र ही सब कुछ है. तो वो सब अधूरे समाधान थे.
तो फिर सही समाधान क्या है? ये आता है चौथे भाग में, रोड्स को लांघना, लीपिंग ओवर रोड्स. इसका क्या मतलब हुआ?
रोड्स को लांघना एक पुरानी ग्रीक कहावत है, मतलब डींगे मारना बंद करो, यहीं कूद के दिखाओ, यानी अब एक्शन का टाइम है. फुकुयामा यहां दिखाते हैं कि उदार लोकतंत्र सिर्फ एक अच्छा ख्याल नहीं है, बल्कि वो इस सदियों पुरानी पहचान की समस्या का वास्तविक समाधान पेश करता है.
कैसे? क्या खास है उदार लोकतंत्र में?
वो देता है सार्वभौमिक और पारस्परिक मान्यता, यूनिवर्सल एंड रेसिप्रोकल रिकॉग्निशन.
सार्वभौमिक और पारस्परिक, इसका मतलब क्या हुआ?
सार्वभौमिक मतलब सबके लिए, बिना किसी भेदभाव के. पारस्परिक मतलब लेन देन वाला. मैं आपकी गरिमा को पहचानता हूँ, आप मेरी गरिमा को पहचानते हैं.
अच्छा.
सोचिए, एक उदार लोकतंत्र में क्या होता है? कानून की नज़र में सब नागरिक बराबर हैं, सबको वोट देने का अधिकार है, अपनी बात कहने की आज़ादी है, राज्य हर व्यक्ति की डिग्निटी, उसकी गरिमा को स्वीकार करता है, उसे राइट्स देता है.
तो कोई स्थायी मालिक या गुलाम नहीं रहता.
बिल्कुल. हर कोई अपने अधिकारों का मालिक है और कानून के सामने सब बराबर हैं. यही बात, ये जो सबकी गरिमा को स्वीकार करना है, उदार लोकतंत्र को इतनी नैतिक ताकत और अपील देती है। ये उस थाइमोस को, उस पहचान की भूख को सही मायने में शांत करती है।
यहाँ तक तो कहानी बहुत पॉजिटिव लगती है। लोकतंत्र जीत गया, सबको पहचान मिल गई, वाह। लेकिन फिर आता है वो पांचवां आखिरी हिस्सा, आखिरी आदमी। यहाँ फुकुयामा चेतावनी देते हैं।
हाँ, और ये चेतावनी बहुत बहुत गहरी है। फुकुयामा यहाँ नीचे को लाते हैं। नीचे ने आधुनिक समाज की आलोचना की थी। फुकुयामा कहते हैं कि इतिहास के अंत में जो समाज बनेगा वो शायद बहुत आरामदायक होगा, बहुत सुरक्षित होगा। कोई बड़ी लड़ाइयां नहीं, कोई बड़े खतरे नहीं।
तो इसमें बुराई क्या है?
बुराई ये है कि शायद उस समाज में रहने वाला इंसान, वो आखिरी आदमी, अपनी महत्वाकांक्षा खो देगा, अपना जज्बा खो देगा, किसी बड़े लक्ष्य के लिए जोखिम उठाने की हिम्मत खो देगा। वो बस अपनी छोटी सी दुनिया में, अपनी सुख सुविधाओं में मस्त रहेगा।
मतलब एक तरह से पालतू बन जाएगा, बिना किसी वाइल्डनेस के।
हाँ, कुछ वैसा ही। नीचे का शब्द इस्तेमाल करे तो कंटेंटेड, संतुष्ट, पर वो संतुष्टि शायद खोखली हो। फुकुयामा का डर यही है कि कहीं ये शांति और समृद्धि हमें अंदर से कमजोर ना बना दे, उद्देश्यहीन ना बना दे।
और अगर ऐसा हुआ, अगर लोग बोर हो गए या उन्हें लगा कि जीवन में कोई मतलब नहीं बचा,
तो क्या होगा? फुकुयामा आगाह करते हैं कि हो सकता है कि वो जो दबा हुआ थाइमोस है, वो पहचान की भूख है, वो फिर से जागे।
लेकिन किस रूप में?
शायद किसी नए, ज्यादा खतरनाक रूप में, जैसे उग्र राष्ट्रवाद, धार्मिक कट्टरता, पहचान की कोई और लड़ाई। लोग शायद फिर से किसी ऐसी चीज की तलाश करें जिसके लिए वो जी सके, मर सकें। और ये चीजें फिर उसी उदार लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती हैं जिसने उन्हें पनपने का मौका दिया।
ओह, ये तो वाकई एक साइकिल जैसा लग रहा है।
बहुत सोचने वाली बात है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, निचोड़ निकालें, तो इस किताब के मुख्य संदेश क्या हैं?
मेरे हिसाब से कुछ बातें बहुत साफ उभर कर आती हैं। पहली, कि इतिहास यूं ही नहीं चल रहा, उसकी एक दिशा है। वो दिशा स्वतंत्रता और बराबरी की तरफ है, और उदार लोकतंत्र इसका लॉजिकल एंड पॉइंट है।
ठीक है।
दूसरी?
दूसरी, इतिहास को दो इंजन खींच रहे हैं। एक बाहरी भौतिक इंजन है, विज्ञान और अर्थव्यवस्था, और एक अंदरूनी मनोवैज्ञानिक इंजन है, वो पहचान या थाइमोस की इच्छा। इन दोनों को समझे बिना हम इतिहास को पूरी तरह नहीं समझ सकते।
हाँ, ये डुअल इंजन वाली बात जरूरी है।
तीसरा और शायद फुकुयामा के लिए सबसे अहम, पहचान की इच्छा सबसे ऊपर है। ये थाइमस आर्थिक स्वार्थ से भी ज्यादा शक्तिशाली है। युद्ध क्यों होते हैं, क्रांतियां क्यों होती हैं, राष्ट्रवाद इतना ताकतवर क्यों है, इन सबको समझने के लिए थाइमस को समझना जरूरी है। और लोकतंत्र इसीलिए टिका हुआ है क्योंकि वो इस गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत को पूरा करता है।
चौथा पॉइंट शायद ये कि उदार लोकतंत्र एक समाधान है।
बिल्कुल, ये वो मालिक गुलाम वाली पुरानी दुविधा को सबके लिए बराबरी और सम्मान देकर हल करता है। ये एक रेजोल्यूशन है।
और पांचवा, वो चेतावनी वाला।
हाँ, पांचवा, कि इस अंत को लेकर एक दुविधा है, एक एम्बिवेलेंस है। सफलता की कीमत चुकानी पड़ सकती है, वो आखिरी आदमी बनने का खतरा जो जीवन को अर्थहीन बना सकता है और नए, शायद पुराने से भी बदतर संघर्षों को जन्म दे सकता है।
अगर हम इन विचारों को आज के भारत के संदर्भ में देखें तो क्या कनेक्शन दिखता है? मुझे लगता है समाज में सम्मान और पहचान की चाहत तो यहाँ बहुत बहुत मजबूत है।
निश्चित रूप से। अब देखिए, भारत में जो एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं, चाहे वो बेहतर जिंदगी की हो या समाज में अपनी एक जगह, अपनी आवाज बनाने की, ये सब उसी मान्यता की तलाश का हिस्सा हैं। हर कोई चाहता है कि उसे गिना जाए, उसे सुना जाए।
हाँ, ये तो है।
और जब हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स देखते हैं, चाहे वो जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर, भाषा या क्षेत्र के नाम पर, उसका जो उभार है उसे भी थाइमस के नजरिए से समझा जा सकता है। लोग अपनी सामूहिक पहचान के लिए सम्मान मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं। ये थाइमस का एक बहुत शक्तिशाली और कभी कभी खतरनाक रूप हो सकता है।
बिल्कुल, इस किताब में कई ऐसी बातें हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं। कुछ खास विचार या पंक्तियां जिनका आप जिक्र करना चाहें, मतलब उनका सार?
हाँ, कुछ आइडियाज तो वाकई बहुत स्ट्राइकिंग है। पहला तो जाहिर है, मूल दावा ही है कि हम शायद सिर्फ शीत युद्ध का अंत नहीं देख रहे, बल्कि इतिहास के वैचारिक सफर का ही अंत देख रहे हैं, जहां उदार लोकतंत्र ही शासन का अंतिम और सार्वभौमिक रूप बनकर उभरा है। मतलब सबसे अच्छा सिस्टम कौन सा है वाली बड़ी बहस खत्म।
ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। दूसरा,
पहचान के बारे में उनका कहना कि ये जो मान्यता की इच्छा है, ये इंसान की सबसे खास, सबसे मानवीय इच्छा है। यही उसे जानवरों से अलग करती है और यही इतिहास का असली इंजन है। ये याद दिलाता है कि राजनीति सिर्फ पैसे या पावर का खेल नहीं है, ये गहरी मनोवैज्ञानिक और आप कह सकते हैं आध्यात्मिक इच्छाओं का मैदान भी है।
तीसरा, आखिरी आदमी वाला।
वो आखिरी आदमी की चेतावनी कि इतिहास के अंत का नागरिक आरामदायक जिंदगी तो जिएगा, सुरक्षित भी रहेगा, पर शायद उसमें बड़े काम करने का महानता का जज्बा नहीं होगा। वो अपनी सुरक्षा और आराम में इतना डूब जाएगा कि किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए खतरा मोल लेना भूल जाएगा। ये सफलता की एक डरावनी तस्वीर है, उदासीनता की।
और एक और बात जो मुझे दिलचस्प लगी वो तानाशाही व्यवस्थाओं के बारे में, कि जो भी सिस्टम मालिक गुलाम के रिश्ते पर टिका है वो अंदर से कमजोर होता है, आत्मविनाशकारी होता है। क्यों? क्योंकि असली पहचान, असली मान्यता तो तभी संतुष्टि देती है जब वो किसी बराबर वाले से मिले।
सही कहा।
ये बताता है कि क्यों गैर लोकतांत्रिक सिस्टम शायद लंबे समय तक स्थिर नहीं रह पाते, उनमें एक अंदरूनी विरोधाभास होता है।
बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि आज की दुनिया में हमारे लिए इन विचारों का क्या मतलब है, ये हमें क्या समझने में मदद करते हैं?
हाँ, आज के टाइम में इनकी रेलेवेंस क्या है?
देखिए, एक तो ये समझने में मदद मिलती है कि 90 के दशक में और उसके बाद दुनिया भर में लोकतंत्र की लहर क्यों चली, क्यों इतने सारे देशों ने इसे अपनाया। लोकतंत्र का आकर्षण सिर्फ आर्थिक नहीं था, वो लोगों को गरिमा और पहचान देने का वादा भी कर रहा था।
हाँ, ये एक पावरफुल अपील थी।
बिल्कुल। और दूसरी तरफ आज जब हम दुनिया भर में असंतोष देख रहे हैं, राष्ट्रवाद का फिर से उभार, लोक लुभावन नेताओं का आना, पहचान की राजनीति का जोर पकड़ना, इसे हम फुकुयामा के नजरिए से देख सकते हैं। शायद ये आखिरी आदमी वाले खोखलेपन उस अर्थहीनता के खिलाफ थाइमोस का एक तरह का विद्रोह है
कि लोग फिर से कोई बड़ा मतलब, कोई मजबूत पहचान ढूंढ रहे हैं।
हाँ, शायद वो पहचान जो उन्हें मौजूदा ठंडे, तर्कसंगत ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में नहीं मिल रही।
और ये भी साफ होता है कि संघर्ष खत्म क्यों नहीं हुए। फुकुयामा ने भले ही कहा कि बड़ी वैचारिक लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन पहचान पर आधारित संघर्ष जैसे धर्म के नाम पर या जातीय राष्ट्रवाद, ये तो शायद और बढ़ गए हैं।
बिल्कुल, क्योंकि ये लोगों को पहचान और सम्मान का एक बहुत शक्तिशाली भावनात्मक एहसास देते हैं, शायद वो एहसास जो एक शांत स्थिर लोकतंत्र नहीं दे पाता।
और आखिर में ये हमें व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर भी सोचने को मजबूर करता है। क्या हमारे लिए सिर्फ आराम और सुरक्षा ही काफी है, या इंसान होने के नाते हमें हमेशा किसी चुनौती, किसी जोखिम, किसी बड़े मकसद से जुड़ने की जरूरत महसूस होती रहेगी?
सही सवाल है। क्या हम सिर्फ सुरक्षा चाहते हैं या सार्थकता भी?
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो ये कि इतिहास सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं है, ये विचारों से चलता है, और इंसान की सबसे गहरी जरूरत अपनी पहचान, अपना सम्मान पाने की जरूरत से चलता है। इसे समझे बिना हम ना तो अतीत को समझ सकते हैं, ना ही आज को।
और मेरे लिए जो सबसे खास बात है वो ये कि लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ चुनाव कराने या आर्थिक विकास करने में नहीं है, उसकी ताकत उस नैतिक और दार्शनिक बुनियाद में है जो हर इंसान को बराबर का सम्मान और पहचान देने का वादा करती है। लेकिन साथ ही वो आखिरी आदमी वाली चेतावनी उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। सफलता और आराम हमें आत्मसंतुष्ट और दिशाहीन भी बना सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा छुपा हुआ खतरा है।
तो संक्षेप में इस गहरी चर्चा से तीन मुख्य बातें याद रखने लायक है। एक, इतिहास की एक कहानी है, एक दिशा है जिसे विज्ञान और पहचान की मानवीय इच्छा मिलकर लिख रही है।
हाँ।
दो, उदार लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक सिस्टम नहीं, बल्कि बराबरी और सम्मान की मानवीय खोज का एक महत्वपूर्ण, शायद तार्किक पड़ाव है।
बिल्कुल।
तीन, लेकिन इस पड़ाव पर पहुंचकर भी एक खतरा है, कहीं हम अपनी रूहानी ताकत, अपनी जीवन का मकसद ही ना खो दें, आखिरी आदमी बनने का खतरा।
बहुत सही, यही वो सवाल है जो फुकुयामा हमारे लिए छोड़ जाते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।